बार बार अजय का जिक्र हो रहा था। माधव खामोश बना रहा जबकि राधिका के जहन में कई बीती बातें घूमने लगी थी। फिर भी वो सारा वक्त शांत रही और इस वक्त कार में भी शांत बैठी बाहर देख रही थी। राधिका, ये अजय के भैया भाभी थे ना? माधव के शब्द उसके कानों में पड़े तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई और नजरें माधव की ओर घूम गई जो उसे ही देख रहा था। जी, स्वभाव से तो दोनों बहुत अच्छे लगे मुझे। भाई भी शरीफ, समझदार और शांत सा है। जब बड़ा भाई इतना अच्छा है तो अजय ऐसा कैसे बन गया? अजय अपने बाप की कार्बन कॉपी है और उन्हीं से सब सीखता था, जबकि भैया और कोमल दोनों स्वभाव में मम्मी जी पर गए हैं। मतलब पेड़ की जड़ों में ही कीड़े लगे थे, फिर फल को तो सड़ना ही था। जी, राधिका ने बिना किसी भाव के हामी भर दी और वापस बाहर की ओर देखने लगी, जबकि ड्राइव करते माधव की गहरी निगाहें उसी पर टिकी थीं। राधिका, आप ठीक हैं? ये सवाल सुनकर राधिका ने चौंकते हुए पलटकर उसे देखा। जी, पर आप अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बस, जब से आप अजय के भैया भाभी से मिलकर आई हैं कुछ खोई खोई सी लग रही हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा? किस बात का? राधिका ने आंखें बड़ी बड़ी करके सवालिया निगाहों से उसे देखा। माधव पल भर ठिठका, फिर संभलते हुए सवाल किया। वो वहां बातों में बार बार अजय का जिक्र हो रहा था, आपकी बीती जिंदगी के बारे में बात हो रही थी, तो शायद आप उसी वजह से परेशान और डिस्टर्ब हैं। माधव ने अंदाजा ही लगाया था। राधिका कुछ पल भावहीन सी उसे देखती रही, फिर भौहें चढ़ाते हुए गंभीरता से सवाल किया, क्या आपको अजय की जिक्र, उसके साथ मुझे जोड़ने और हमारे रिश्ते के बारे में बातें सुनकर फर्क पड़ा था, बुरा लगा था? राधिका का सवाल सुनकर माधव के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए और उसने तुरंत ही एतराज जताया। बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस नाम से नहीं, उस शख्स के हमारे बीच आने और आपकी तकलीफ की वजह बनने से परेशानी है। मैं जानता हूं कि वो आपका अतीत है और एक वक्त था जब आपका उससे रिश्ता हुआ करता था, पर वो पास्ट है जिसकी मेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं। अजय का जिक्र क्या, अगर अजय खुद आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह सिर्फ तब तक है जब तक कि आप पर इन बातों और चीजों का कोई असर नहीं होता। हमारा रिश्ता इससे प्रभावित नहीं होता। अगर आपको उससे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर बात आप पर आती है, हमारे रिश्ते पर आती है, आपकी मुस्कुराहट पर आती है, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। राधिका एकटक उसे देखती रही, फिर सरकते हुए उसके जरा करीब आई और अपना सर उसके कंधे पर रखते हुए उसकी बांह को अपनी दोनों हथेलियों से थाम लिया। मुझे अब आपके अलावा किसी से फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए आप और हमारा परिवार ही सब कुछ है और हमेशा रहेगा। अजय मेरा अतीत है जिसे मैं चाहूं भी तो कभी पूरी तरह से भुला नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो सिर्फ नाम नहीं, मेरी रूह पर लगा ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। पर आप मेरा आज है और आपके साथ मैं अपने आने वाले कल को जीना चाहती हूँ। अब मैं कुछ भी खराब नहीं करना चाहती। इतनी मुश्किलों के बाद मुझे ये खुशियां मिली हैं जिन्हें मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपने आज में जीऊंगी। कल क्या था, आने वाले कल में क्या होगा, ये सोचकर आज के पलों को नहीं खोऊंगी, ना ही अपनी अतीत की परछाई इस पर डालकर इस खुशी को अपनी ही नजर लगवाऊंगी। मेरा पास्ट जैसा भी था पर मेरा आज बहुत खूबसूरत है, मैं बस अपने आज में जीना चाहती हूँ। राधिका ने बहुत वक्त लगा दिया था पर आज उसने अपनी जिंदगी के लिए एक बिल्कुल सही फैसला लिया था। माधव ने मुस्कुराते हुए उसके सर को अपने लबों से चूम लिया। राधिका, आप जाएंगी भैया भाभी से मिलने? आप क्या चाहते हैं, मैं जाऊं? राधिका सर उठाकर माधव को देखने लगी। माधव ने भी नजरें उसकी ओर घुमाई और हौले से मुस्कुरा दिया। अगर आप उनसे मिलने में कंफर्टेबल हैं तो मुझे तो इससे कोई एतराज नहीं, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आपको जाना चाहिए। वो दोनों ही आपसे बहुत प्यार करते हैं, इतने प्यार से बुलाया है उन्होंने आपको। अगर आप नहीं जाती हैं तो शायद उन्हें बुरा लगे, पर अगर आपको लगता है कि उनसे बात करने से, घुलने मिलने से आपके लिए अपने पास से बाहर निकलना मुश्किल होगा तो रहने दीजिए। आपको ऐसा कोई काम करने की जरूरत नहीं जो आपके दर्द और तकलीफ की वजह बने। अंत तक आते आते माधव गंभीर हो गया था और उसकी बातों व आंखों में अपने लिए फिक्र और प्यार महसूस करते हुए राधिका मुस्कुराने लगी थी। मैंने पहले डिवोर्स के बाद उस रिश्ते से जुड़े सभी लोगों से अपना कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया था ताकि मैं वो सब भुलाकर आगे बढ़ सकूं। अजय से जुड़े लोगों के कारण बार बार वो मेरी जिंदगी में वापस ना आए, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गलत थी। मैं सिर्फ भाग रही थी, कुछ भी भुला नहीं थी मैं। मैंने सबसे रिश्ते खत्म किए क्योंकि अजय से फर्क पड़ता था मुझे और यही नहीं चाहती थी मैं, पर उससे इतने दूर आकर भी उसका असर होता है मुझ पर। लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी में उस शख्स की अहमियत शून्य कर दूंगी। अब मैं उससे दूर नहीं भागूंगी बल्कि उसका सामना करूंगी। अब मैं खुद को उससे पूरी तरह से बेअसर कर दूंगी, जैसे कभी उसकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। अब मैं अपनी जिंदगी से उसे पूरी तरह से निकाल कर फेंक दूंगी ताकि वो और उससे जुड़ी कोई भी याद कभी दोबारा मेरे आज और आने वाले कल को प्रभावित न कर सके। बस मुझे आपका साथ चाहिए ताकि अगर कहीं मैं कमजोर पड़ूं तो आप संभाल लें मुझे। मैं तो हमेशा आपके साथ हूं राधिका, और हमेशा रहूंगा। माधव का जवाब सुनकर राधिका के लबों पर मीठी सी मुस्कान फैल गई। उसने माधव के होठों को चूम लिया और झट से अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। उसके अचानक ये इस किस्से माधव पहले तो चौंक गया, फिर उसकी इस अदा पर मुस्कुरा उठा। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे, कल बाइक पर थोड़ा ही सामान ले जा पाया था, आज कार साथ ही थी तो सारा सामान अंदर रखवाया। रास्ते से कुछ फ्रूट्स भी खरीदे और घर के लिए निकल गए। कार घर के गेट के सामने आकर रुकी। माधव ने कार का ट्रंक खोला और राशन का सामान बाहर निकालने लगा तो राधिका भी वहीं पहुंच गई। माधव ने अभी आटे और चावल के कट्टे निकालकर बाहर रखे ही थे कि राधिका अंदर से घर के सामान से भरा बड़ा सा थैला बाहर निकालने लगी। ये देखकर माधव की भौहें से कुड़कर आपस में जुड़ गई और कठोर लहजे में उसने राधिका को टोक दिया। राधिका, ये क्या कर रही हैं आप? आपकी मदद करवा रही हूँ, आप अकेले इतना सारा सामान कैसे लेकर जाएंगे? राधिका ने मशगूफियत भरे अंदाज में जवाब दिया और थैला उठाने लगी कि माधव ने उसके हाथ से उसे लगभग छीन लिया। वो मैं देखूंगी राधिका, आपको बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं, और जब मैंने मदद नहीं मांगी तो मदद करने की भी कोई जरूरत नहीं। राधिका उसका ये लहजा सुनकर चौंक गई और माथे पर सिलवटें डालते हुए परेशान सी बोली, मैं उठवा देती हूँ ना आपके साथ, काम आसान हो जाएगा। राधिका ने फिर थैला पकड़ना चाहा तो माधव ने उसे चावल के कट्टे के बगल में रख दिया और नाराजगी भरी घूरती निगाहें राधिका के चेहरे पर ठहरी। राधिका, कल ही आपको मम्मी ने साफ शब्दों में कहा है ना कि अभी आपको भारी नहीं उठाना है, फिर भी आप जिद कर रही हैं। जिद नहीं कर रही और इतना भी भारी नहीं है, ये उठा लूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप पीछे हटकर खड़ी हो जाइए, खबरदार जो किसी एक चीज को भी हाथ लगाए तो। माधव का लहजा कठोर था और चेतावनी भरी निगाहें राधिका को ही घूर रही थी। माधव जी, राधिका के लब फड़फड़ाए पर आगे के शब्द गले में ही अटक कर रह गए क्योंकि माधव ने बीच में ही उसे टोक दिया। मैंने क्या कहा है राधिका, मेरी बात न मानकर सजा की हकदार बनना चाहती हैं आप? चेहरे पर सख्त भाव लिए माधव कठोर निगाहों से उसे देखने लगा। राधिका ने तुरंत ही इनकार में सर हिलाया, नहीं, पर मैं बस, कोई बस या गाड़ी नहीं आएगी अब, मैंने एक बार कह दिया कि आप कुछ नहीं उठाएंगी तो कुछ नहीं उठाएंगी, चुपचाप खड़ी रहिए, अगर किसी एक चीज को भी आपने हाथ लगाया तो सोच लीजिए।
माधव ने फिर से उसकी बात बीच में काटते हुए सख्त निगाहों से उसे घूरते हुए चेतावनी दी और चावल के बोरे को उठाकर अपने कंधे पर डाले अंदर चला गया। राधिका मुंह लटकाए वहां खड़ी रही। कुछ देर में माधव सब कुछ अंदर रखाया था। अंत में उसने बैक सीट से फलों की पन्नी निकाली और राधिका को पकड़ा दिए। ये ले चलिए आप। राधिका ने पहले अपने हाथ में मौजूद फलों की थैली को देखा, फिर सामने खड़े माधव को जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। राधिका ने नाक से कोड़ते हुए मुंह फुला लिया और गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली गई। माधव भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल दिया। अनुपमा जी को माधव ने डॉक्टर की कही सारी बातें बताई। तब तक मैं राधिका रसोई में चली गई। सामान आया था, अब उसे उसकी सही जगह पर भी पहुंचाना था। उसने मसाले और बाकी छोटी मोटी चीजें उनके डब्बों में रख दी, फिर चावल के ड्रम में चावल रखने लगी। ठीक उसी वक्त माधव वहां पहुंच गया और नाराजगी भरी निगाहों से उसे घूरने लगा। आपको मैंने कमरे में जाकर आराम करने कहा था या यहां आकर सामान छेड़ने? अचानक आई माधव की आवाज सुनकर राधिका चौंक गई। पल भर को चेहरे का रंग उड़ा, घबराहट में अपनी जीप को दांतों तले दबा दिया, फिर पलटकर कातर निगाहों से माधव को देखा जो अब भी आंखें चढ़ाए नाराजगी से उसे ही घूर रहा था। मुझे थकान नहीं हुई है इसलिए सोचा कि सामान सेट कर लूं। राधिका की बात सुनकर माधव आंखें छोटी छोटी किए उसे घूरने लगा और तल्ख लहजे में बोला, सोचती बहुत है आप, अब जरा सोचना बंद कर दीजिए और अपने दिमाग के साथ साथ शरीर को भी आराम दीजिए, क्योंकि भले आप नहीं थकी हों पर आपके अंदर जो हमारा बच्चा है वो थक गया होगा और आप आराम करेंगी तभी उसे आराम मिलेगा। हाँ, जैसे आपके बच्चे से तो मैंने पहाड़ खुदवा लिया है इसलिए बहुत थक गया है बेचारा। राधिका ने खींचते हुए बुरा सा मुंह बना लिया। माधव ने त्योरियां चढ़ाकर उसे घूरा और आंखों से ही कुछ इशारा किया जिसे समझते हुए राधिका झल्ला उठी। बीमार नहीं हूं मैं, बस प्रेग्नेंट ही हूं, कर सकती हूं इतना काम, इसके लिए आपको इतना भड़कने की जरूरत नहीं है मुझ पर। राधिका, आप यहां से जा रही है या नहीं? माधव की सर्द व गंभीर आवाज राधिका के कानों से टकराई। राधिका बुरी तरह खींच उठी। जा रही हूं, अब बेड से नीचे ही नहीं उतरूंगी, खुश? गुस्से में मुंह सुझाए वो वहां से चली गई। माधव ने सर हिलाया और आधे बिखरे सामान को समेटने लगा। टू बी कंटिन्यूड। कमेंट करके बताइए कि माधव का ये व्यवहार और उस पर राधिका का रिएक्शन सही है या गलत।